अभी अभी हम सब ने एक गीत सुना, आपने भी ध्यान से सुना होगा। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नव युग का निर्माण करने शिव ने जिसमें स्थान लिया। तो कौन है वो दिव्य पुरुष जिसमें शिव ने स्थान लिया? वो निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा ने उनमें दिव्य प्रवेश किया, एक महान कार्य करने अर्थ। इस सृष्टि को फिर से नवयुग बनाने लिए, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए उस दिव्य पुरुष की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनके चित्र आप कई स्थानों पर देखते हैं। ये कौन थे, क्या कार्य उनको भगवान ने दिया, कैसे दिया, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, और यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैसे आरंभ हुई, जो आज से 75-76 वर्ष पूर्व 1936 में इसका शुभारंभ हुआ और एक बीज के रूप में पिताश्री जी ने वो रोपा और आज एक वट वृक्ष के रूप में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय खड़ा है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में है। तो ये 75 वर्षों की कहानी हम आपको लगभग 75 मिनटों में तो सुनाना चाहेंगे। तो कैसे हम आरंभ करते हैं ये 75 वर्षों की यात्रा 1936-37 से जो शुरू हुई और 2011-12 हमने इसकी प्लैटिनम जुबली मनाई, 75 साल। तो ये 75 वर्षों की बहुत बड़ी यात्रा है। ये कैसे सफर तय हुआ जो आज हम यहाँ पहुंचे हैं, और भारत के बाहर करीब 137 देशों में, 130 से भी अधिक देशों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं हैं, और हमारे जैसे हजारों बहनें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित हैं, भाई भी कुछ समर्पित हैं, और आप जैसे लाखों भाई बहनें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विभिन्न सेवा केंद्रों पर नियमित रूप से विद्यार्थी बनकर के आते हैं। करीब 10,000 सेवा केंद्र हैं और 10,00,000 से भी अधिक विद्यार्थी के रूप में इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। तो ये किस प्रकार शुरू हुआ, आरंभ करेंगे इस कहानी का। दादा लेखराज के नाम से एक प्रसिद्ध जौहरी थे। 1876 में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुए थे, गांव में पैदा हुए थे। इनके पिता गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे, तो साधारण परिवार था। लेकिन उस साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने जीवन में इतनी तरक्की की जो एक बहुत बड़े सफल जौहरी बन गए, जवाहरात का धंधा करने लगे, और उनके ग्राहक कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। लेकिन उस समय भारत अंग्रेजों के राज्य में था, और राजाएं महाराजाएं भारत में बहुत थे, राजे रजवाड़े थे। तो राजे महाराजाएं और अंग्रेज उनके ग्राहक थे, और उनसे बहुत सारी खरीदारी करते थे। रानियां तो महलों में रहती थी, तो वो तो आ नहीं सकती थी, लेकिन बाबा उनके पास जाते थे, राजाएं महाराजाएं उनको बुलाते थे। बहुत रॉयल्टी थी उनमें, और कभी राजाएं महाराजाएं कहते थे कि भगवान ने बड़ी भूल की, राजा तो आपको बनाना चाहिए था, और आपको एक व्यापारी बनाया, और राजा हमें बनाया। आपके अंदर जो रॉयल संस्कार है वो राजा से कम नहीं है। तो बहुत धनी बने, अपने जीवन काल में धन प्राप्त किया। उनका बहुत बड़ा शोरूम था कलकत्ता में, और स्वयं हैदराबाद सिंध में रहते थे। लखीराज बाबू के नाम से हैदराबाद सिंध में बहुत प्रख्यात थे। राजस्थान में बहुत आया करते थे, क्योंकि राजस्थान में राजाएं महाराजाएं बहुत थे। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर के राजा महाराजा, गुजरात के भी, यहाँ तक कि नेपाल के भी राजा थे उस समय, राणा परिवार भी थे। तो उनके साथ उनका बहुत अच्छा व्यापार चलता, हीरे वही खरीदते थे। तो धनी थे, पर धनी के साथ साथ बहुत बड़े दानी भी थे। कोई भी उनके द्वार पर आता था तो कभी हाथ खाली नहीं जाता था। खास गरीबों की कतारें लग जाती थी, उनसे दान लेते थे। साधु संत महात्माएं भी उनके द्वार पर आते थे और सत्संग करते थे, तो उनको भी अच्छी दक्षिणा दे करके संतुष्ट करते थे। मानो कि जितने ही धनी उतने ही दानी थे और उतने ही बहुत बड़े भक्त भी थे, विष्णु की भक्ति करते थे, पक्के वैष्णव थे, वल्भाचारी कुल के, और विष्णु की भक्ति किए बिना, गीता का पाठ किए बिना अपना मुख भी जूठा नहीं करते थे। हालांकि वो ट्रेन में भी बहुत सफर करते थे, लेकिन ट्रेन में भी सुबह सुबह उठ करके, नहा धो करके सबसे पहले गीता का पाठ करते थे और उसके बाद कुछ और काम करते थे। अपने परिवार वालों को भी यही सिखाया, घर में स्वयं सत्संग करते थे और कभी कभी संतों को, महात्माओं को अपने घर में बुला करके उनके द्वारा सत्संग कराते थे। मानो बहुत ही धार्मिक विचारों के थे, भक्ति भावना घर में थी। कोई ऐसा मंदिर नहीं था जहां बाबा न गए हो। अमरनाथ की यात्रा भी की थी बाबा ने। तो धनी के साथ दानी और उतने ही बड़े भक्त थे, तो कैसे 60 वर्ष की आयु जब उनकी हुई तो उनके जीवन में कुछ वैराग्य सा आने लगा। परिवार तो बहुत सुखी था, 5 बच्चे थे, 3 बेटियां 2 बेटे, सब की लगभग शादी भी हो चुकी थी। मानो जो जीवन के गृहस्थी के की जिम्मेदारी थी वो भी पूरी हो चुकी थी लगभग। और जैसे ही उनकी उम्र 60 वर्ष की हुई तो उनके अंदर जो वैराग्य आया, इसके कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वैसे तो बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे उन्होंने, लेकिन उनके मन में बहुत प्रश्न उठते थे, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इतना दुख क्यों है, ईश्वर कौन है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है। और अक्सर करके वे अपने गुरुओं से ये पूछते थे। जीवन काल में 12 गुरु किए उन्होंने। वैसे तो एक ही गुरु कोई करता है, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए उनके उत्तरों से तो फिर उनसे और ऊंचा गुरु के पास जाते थे। तो इस प्रकार से उनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन भी आता रहा और उनकी खोज भी जारी रही। तो लगभग जब उनकी उम्र 60 वर्ष की हो चली थी तो उन्होंने, उनको आया कि बस अब भगवान हमको अपना दर्शन कराए। बहुत भक्ति की हमने, मेरे इष्ट मुझे दर्शन दे। तो विष्णु की भक्ति करते थे। तो कैसे एक दिन की बात है, विष्णु की भक्ति में ही तल्लीन थे और अचानक बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। इतना सुंदर साक्षात्कार विष्णु का उनको हुआ। 4 भुजाधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सम्मुख आके उपस्थित हो गए और उनको एक वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। और देखते देखते बाबा ने देखा कि एक बार नहीं, अनेक बार विष्णु के अनेक स्वरूप, कई हैं विष्णु के कई स्वरूप मंदिरों में दिखाते हैं, वो एक एक करके बाबा के सामने प्रत्यक्ष होते गए और हर एक स्वरूप ने उनको एक वरदान दिया। वही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे समान हो। तो काफी देर तक ये अनुभव बाबा करते रहे और जब ये साक्षात्कार समाप्त हुआ तो बाबा के मन में बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि ये कैसा मुझे वरदान मिला। वैसे जब भी किसी को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, कोई देवी का भक्त होता है किसी का भी भक्त होता है, उसको दर्शन होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, तो उनको जो वरदान मिलता है वो मिलता है तथास्तु, अर्थात वैसा ही हो, वैसा ही होगा। लेकिन ये वरदान था तत्त्वम, तो मेरे जैसे ही हो। तो ये प्रश्न उनके मन में जागा कि मैं इनके समान कैसे हूं, मैं तो इनका भक्त हूं, मैं तो इनका सेवक हूं, दास हूं, भक्ति में तो यही समझते हैं, मैं इन जैसा कैसे हूं। तो ये प्रश्न अपने गुरु से करते थे कि ये वरदान मुझे कैसे मिला। तो गुरु से उनको जो उनकी गुरु की समझ में आई बात, उस अनुसार गुरु ने कहा कि हो सकता है भगवान को आपसे कुछ कराना है। जो ईश्वर का कार्य है वो अपने भक्तों से ही कराते हैं, तो शायद आपको निमित्त बनाना होगा, इसीलिए आपको वरदान मिला कि तुम भी मेरे जैसे हो। अब ये बात उसको लगी जरूर, लेकिन उसको आया भगवान को मेरे से क्या काम कराना है, मेरे पास क्या शक्ति है जो भगवान मेरे से काम कराएगा। लेकिन इस प्रश्न का जवाब कौन दे, क्या काम कराएगा। तो गुरु ने उनको कहा, वैसे ही उनके अंदर में वैराग्य सा आने लगा था, तो गुरु ने उनको कहा कि थोड़ा समय आप एकांतवास में चले जाइए, एकांत में रहें। तो एकांत में रहने से कुछ और आपको अनुभूति होगी, भगवान आपको दर्शन देंगे और आपको कुछ और संकेत देंगे, अभी तो शुरुआत है। तो अपने परिवार वालों से छुट्टी लेकर, बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे जो उस समय अविभाजित भारत था, ये 1936 की बात है, आज से 75-76 साल पहले। तो बाबा अपने घर वालों से छुट्टी लेकर हैदराबाद सिंध, जो अभी पाकिस्तान में है, तो वहां से बाबा बनारस गए। बनारस में उनके मित्र रहते थे जो उनको अक्सर निमंत्रण देते रहते थे कि आकर यहाँ थोड़ा समय रहो, संतों का संग करो, गंगा के घाट पर आकर के कुछ तपस्या करो, गंगा का घाट है बनारस में, वाराणसी में। तो इनको मौका मिला कि चलो थोड़ा एकांतवास करेंगे। तो जैसे ही बाबा अपने मित्र के पास गए, तो उनके मित्र की बहुत बड़ी कोठी थी, बहुत बड़ा बगीचा था बनारस में। तो रोज शाम के समय बाबा एक पेड़ के नीचे बैठ करके विष्णु का ध्यान करते थे, वही उनके इष्ट थे। तो कैसे एक दिन की बात है, अनायास बाबा को एक भयंकर विनाश का साक्षात्कार हुआ, भयंकर रूप से विनाश, इस दुनिया का विनाश ये बाबा ने देखा, जिसमें बाबा ने अनुभव किया कि किस प्रकार अणु युद्ध हो रहा है। उस समय अणु युद्ध का तो पता भी नहीं था किसको, लेकिन ये बाबा ने देखा कि हवाई जहाज आकाश में मंडरा रहे हैं और हवाई जहाज से कोई ऐसी चीज नीचे गिरी जैसे मिसाइल के रूप में, और वो चीज जहां गिरी वहां आग ही आग निकली। और देखते देखते बाबा ने देखा कैसे सब आग में जलकर राख हो गया, ये बाबा ने देखा, ये पहला दृश्य देखा। तो बाबा को समझ में नहीं आया ये क्या देख रहा हूं, पर ये अणु युद्ध था। और उसके बाद दूसरा दृश्य भी उस थोड़ी देर में देखा, जिसमें बाबा ने गृह युद्ध का साक्षात्कार किया, लोग आपस में एक दो को पर बंदूकें चला रहे हैं, एक दो की हत्या कर रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, मानो एक ऐसा गृह युद्ध, सिविल वॉर, जिसमें बाबा ने देखा कि थोड़े समय के बाद सब लाशें पड़ी है, खून की नदियां बह रही है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, गिर रहे हैं और बंदूकें चल रही हैं। ये बाबा ने देखा गृह युद्ध का रूप। फिर तीसरे तरफ बाबा ने प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा विनाश देखा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पांचों ही तत्व इतना कहर मचा रहे हैं, जो देखते देखते बाबा ने देखा सब जल मग्न हो गया, सारा संसार जैसे प्रलय का रूप बाबा ने देखा। और फिर बाबा को तो समझ में नहीं आया ये सब मैं क्या देख रहा हूं, तो दम से बाबा जैसे रोने लग गए, परमात्मा को पुकारा, हे प्रभु ये मुझे क्यों दिखा रहे हो, क्या ये दुनिया ऐसे खत्म हो जाएगी? और फिर इतना सुंदर संसार जो आपने बनाया है, ये आपका ही संसार है, आपकी रचना है, ये सब खत्म हो जाएगा, फिर ये दुनिया बनाई क्यों अगर ऐसे ही खत्म होनी है? हे भगवान हमें राज बताइए और ये भी बताइए कि हमको करना क्या है, आगे क्या मुझे करना है, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो मानो कि बस यही उनके अंदर में चिंतन चला, लेकिन अभी कौन उनको बताए, ये तो केवल देख लिया, बताए कौन? तो फिर और भी बाबा के अंदर में वैराग्य आ गया कि ये बस दुनिया खत्म होने वाली है। फिर थोड़े समय के बाद बाबा को एक और साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने एक बहुत ही अनूठा संसार देखा, जिसको हम परम धाम कहते हैं, अखंड ज्योति का महतत्व कहते हैं, आकाश से भी पार जहाँ सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, वो परम धाम का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा सुनहरा लाल प्रकाश चारों ओर व्याप्त और एकदम शांति, और उस शांति के प्रकाश में छोटे 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 सितारे और एक बड़ा सितारा ऊपर। बाबा को तो समझ में नहीं आया ये क्या है, लेकिन अभी हम समझते हैं ये आत्माओं का धाम है, जिसको परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम कहते हैं, जहाँ हम आत्माएं शांति की अवस्था में स्थित रहती है। और फिर थोड़े समय के बाद देखा कि उस धाम से वो जो ज्योति चारों तरफ थी, वो प्रकाश का रूप था ज्योति का, एक उल्टे झाड़ के रूप में था, और धीरे धीरे वो छोटे छोटे सितारे वहाँ उस परम ज्योति से जैसे निकल करके धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगे, नीचे की ओर आने लगे, ये बाबा ने साक्षात्कार में देखा। और देखते ही देखते बाबा ने देखा कि वो छोटे छोटे जो सितारे माफिक ज्योति थी, वो नीचे उतरते उतरते इस धरती पर आ गई। तो एक ओर विनाश का साक्षात्कार, और दूसरी ओर जैसे वो धरती पर आती गई, धरती पर परिवर्तन होने लगा, और एकदम जो जलमग्न संसार हो गया था, आग की लपेटों में था, कहां कहां पर बहुत सब कुछ नष्ट हो चुका था, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, और बाबा ने देखा कि कैसे एक सुंदर संसार बन गया। वो छोटे छोटे सितारे देवी या देवता के रूप में इस संसार में आने लगे, और देखते देखते सारा ही प्रकृति का स्वरूप परिवर्तित होकर के पांचों ही तत्वों का एक सुंदर स्वरूप बाबा के सामने आया, और एक सतयुगी दुनिया, स्वर्गीय दुनिया बाबा ने देखी, और उसमें देखा कैसे लक्ष्मी और नारायण इस विश्व के मालिक हैं, और उनका सुंदर सोने का हीरे जवाहरातों का महल है, उनके आगे पीछे सब देवी देवताएं हैं, रास विलास चल रहा है, प्रकृति का सुंदर स्वरूप बाबा ने देखा, और एक आवाज सुनी, एक आकाशवाणी के रूप में आवाज सुनी, जिसमें शब्द क्या थे, लखीराज उठो जागो, अब ऐसी सतयुगी दुनिया तुमको बनानी है, इस कलयुग के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी दुनिया आनी है, और आपको इसके निमित्त बनना है। ये आवाज उनको सुनाई दी, उठो जागो, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। तो बहुत सुंदर अनुभव किया, लेकिन उसके बाद बाबा का प्रश्न और भी ज्यादा हो गए कि ऐसी दुनिया मैं बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, मेरे पास क्या ताकत है, मैं अकेला में क्या करूंगा, इतना बड़ा संसार मैं कैसे इसको इतना बदल सकता हूँ। तो फिर उनको मन में प्रश्न उठे कि ये भगवान का कार्य मुझे करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये भगवान ये भी तो बताओ। तो पहेली ही पहेली थी, समझ में कुछ भी नहीं आया, परंतु उसके बाद बाबा को मन में आया कि मैं ऐसे ही यहाँ ही बैठा रहूंगा बनारस में तो काम नहीं बनेगा, मुझे कुछ करना होगा, कुछ एक्शन लेना होगा उसके लिए। तो बाबा बनारस से कलकत्ता गए, जहाँ उनका बहुत बड़ी दुकान थी, उनके पार्टनर वहीं रहते थे, पार्टनर दुकान संभालते थे और बाबा राजाओं महाराजाओं के पास जाते थे। उस शोरूम में जो कलकत्ता में बाबा की दुकान थी, वो बहुत ही फेमस दुकान थी, बहुत प्रख्यात, और अंग्रेज लोग कलकत्ता से ही भारत में एंटर करते थे, शिप से आते थे, जहाज से आते थे। तो यहाँ तक कि क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया, वो भी उनके दुकान में, शोरूम में गए थे हीरे खरीदने के लिए। तो इतना बड़ा व्यापार था, और अब भगवान ने उसको दूसरा काम दिया। तो जैसे वो कलकत्ता पहुंचे, अपने पार्टनर से मिले, तो जो हीरे बाबा देखते थे, बाबा को तो वो हीरे पत्थर दिखाई देने लगे, जैसे दृष्टि बाबा की बदल गई, कुछ समझ में ही नहीं आया, और एकदम जैसे वैराग्य आ गया सारे संसार से। अपने पार्टनर को ये बात बताई कि अब मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे सच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करने लिए कहा है, बहुत बड़ा कार्य सौंपा है। तो पार्टनर को समझाया, और जो कुछ उनका हिस्सा था बिजनेस का, वो ले लिया और पार्टनर को दुकान दे दी, क्योंकि बहुत प्रॉफिट भी तो होगा जरूर। और बाबा हैदराबाद सिंध कलकत्ता से वापस चले गए, बिजनेस को वाइंड अप करके, समाप्त करके। अब जब बाबा वापस हैदराबाद सिंध गए, तो घर वाले तो बाबा को देख करके बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि कहां बाबा इतना ठाट वाट से रहते थे, क्या राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना था, और एकदम वापस आकर जैसे धोती कुर्ता बिल्कुल साधारण जैसे गांव में पहनते हैं, वैसे ही वापस वही वो स्वरूप हो गया। तो परिवार वाले तो समझ ही नहीं सके कि बाबा को क्या हो गया, लेकिन इतना जरूर समझा कि इनको कुछ ऐसे दर्शन हुए हैं जिससे उनको बहुत वैराग्य आ गया है संसार से, और भगवान को इनसे कुछ काम कराना है, क्या कराना है, कैसे कराना है, ये कुछ समझ में नहीं आया। अब इसके बाद विचित्र लीलाएं होने लगी, चमत्कार होने लगे, क्योंकि जो भी बाबा को देखते थे, बुजुर्ग व्यक्ति 60 बरस से ऊपर उनकी उम्र थी, और जो बाबा को देखते थे उनको वो बुजुर्ग रूप नहीं दिखाई देता था, लेकिन उनको एक अलग ही रूप दिखाई देता था। और उसके पहले बाबा को जैसे वो वापस आए, अपने घर आए हैदराबाद सिंध में, तो उनको एक और अलौकिक साक्षात्कार हुआ, जिस अलौकिक साक्षात्कार में उन्होंने बहुत प्रकाश देखा, ज्योति देखी, ऐसी ज्योति जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, बहुत तेजोमय ज्योति, पर जितनी ही वो तेजोमय थी उतनी वो शीतल थी, तेज भी था, प्रकाश भी था, पर शीतलता भी थी। और जैसे ही वो उसको देखते रहे उस प्रकाश को, फिर उसने अनुभव किया कि वो प्रकाश, वो ज्योति उनके नजदीक आई, और नजदीक आकर जैसे उनमें प्रवेश हो गए, उनके अंदर चली गई, मानो उस समय बाबा को शिव का साक्षात्कार हुआ। ज्योति स्वरूप निराकार शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और बाबा ने देखा जैसे वो उनके निकट आई और उनके अंदर प्रवेश हो गए। आंखें तो बंद थी, परिवार वाले बाबा को देखने लगे ये क्या अनुभव कर रहे हैं। उनके चेहरे पर बहुत ललाट था, प्रकाश था, आभा थी। तो जब बाबा ने आंखें खोली तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने कहा कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, बहुत तेजोमय थी पर इतनी शीतल भी थी, बहुत सुखद अनुभव हुआ और वो प्रकाश वो शक्ति जैसे मेरे अंदर आ गई, मानो परमात्मा का उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ। और वो साक्षात्कार से अनुभव किया कि कैसे वो उनके अंदर प्रवेश हो गए वो शक्ति। और फिर तो चमत्कार हुए। क्या चमत्कार हुए? जो भी बाबा को देखते थे, था तो बुजुर्ग रूप, 60 बरस से भी ऊपर उनकी उम्र थी, लेकिन जैसे ही बाबा को देखते थे वो बुजुर्ग रूप ओझल हो जाता था और श्री कृष्ण जैसे उनके सामने खड़ा है बच्चे के रूप में। बाबा ने ये अनुभव, बाबा ने नहीं औरों ने अनुभव किया कि ये श्री कृष्ण जैसे उनके सामने खड़े हैं, मोर मुकुटधारी बांसुरी बजा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, ये उन्होंने देखा। घर वालों ने अनुभव किया, उनकी पत्नी उनके बच्चे उन्होंने ये अनुभव किया। तो बाबा को बताते थे कि आप नहीं थे पर जैसे श्री कृष्ण खड़ा है, तो बाबा को तो समझ में नहीं आया, बाबा के मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कौन सी शक्ति काम करा रही मेरे से, मुझे भी कुछ पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया बाबा को। फिर धीरे धीरे ये चमत्कार कैसे बढ़ गया कि जो बाबा के सामने आते थे बाबा की उनको दृष्टि मिली और एकदम से वो ध्यान में चले जाते थे और कृष्ण का साक्षात्कार करते थे। इतना ही नहीं, उनसे और आगे लोगों को घर बैठे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा, जिसमें वो देखते थे कैसे वो पिताश्री मानो साधारण से अभी पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में बन गए। ये प्रख्यात कहानी स्टोरी आपको हम सुनाने जा रहे हैं कि तो जैसे ही बाबा घर में रहते थे, सत्संग करते थे, कोई नई बात नहीं थी उनके लिए, लेकिन लोगों को घर बैठे उनका साक्षात्कार होने लगा। श्री कृष्ण का वे साक्षात्कार करते थे और श्री कृष्ण के नजदीक जाने की कोशिश करते थे तो वो रूप गायब और पिताश्री जी उनके सामने खड़े हैं और श्री कृष्ण उनके पीछे है। वो कह रहा है कि इशारे से मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। तो इशारे से कृष्ण उनको इनके पास जाने का संकेत देते थे और लोग भागते भागते ढूंढते ढूंढते इनके पास पहुंचते थे और जैसे इनके सामने आते थे उनको कृष्ण के दर्शन होते थे। अब ये एक बहुत विचित्र लीला होने लगी, अखबारों में ही आ गया, याद तक कि अमेरिका की अखबार में भी मैगजीन में टाइम मैगजीन निकलती है अमेरिका में, उस मैगजीन में तो इंटरनेशनल न्यूज होती है, उसमें ये न्यूज आई कि हैदराबाद सिंध में एक दादा लेखराज है, उसके पास एक चमत्कारिक शक्ति है, जो उनके सामने जाता उनको कृष्ण का दर्शन होता है। वहां तो अखबारों में इतनी हॉट न्यूज बन गई, वहां एक पैसे में कुल्फी मिलती थी, तो जैसे पैसे में कुल्फी वैसे पैसे पैसे में साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार, ऐसे न्यूज बन गई। अखबार में तो ये सब बातें बहुत ही चटपटी उनको पसंद आती थी ऐसे सुनाने के लिए या लिखने के लिए, लेकिन बाबा कहते थे ये मेरी कोई शक्ति नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास क्या ताकत है, मैं तो विष्णु का भक्त था, यही था। परंतु उनको ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और उसके बाद उनके द्वारा लोगों को श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। बस फिर तो लोग आने लगे, तो सबसे पहले जो आई उसमें भी बाबा के पास कुमारियां ज्यादा आई, यंग सिस्टर्स, तो पहली जो ये बहन आप देख रहे हैं इनका नाम राधे था। इनके पिता की बहुत बड़ी बिजनेस थी और अचानक बिजनेस में देवाला मारा तो हार्ट फेल हो गया, वो मर गया। तो इनकी जो माँ थी वो बहुत दुखी रहने लगती थी, बहुत दुखी, बहुत रोती थी। उस समय हैदराबाद में कोई किसका पति मर जाए और वो विधवा बन जाए तो बहुत अपसुगन, जैसे एक श्रापित स्त्री के रूप में मानी जाती थी, उसको कोई पूछता नहीं था। और वो पूरा एक साल तक काले काले कपड़े पहनकर, बाल खुले रखकर, छाती पीटना, जैसे सियापा करते ना, रोते रहना, यही करते थे। अगर बाई चांस वो कहीं बाहर भी निकली और किसी दुकान के पास गई तो वो दुकान वाले समझते थे कि ये जैसे हमारे ऊपर कोई ये तो श्रापित स्त्री है, ये मेरे हमारे नजदीक आएगी तो हमारे ऊपर भी कुछ इसका असर आएगा, तो वो दूर दूर भेजते थे, चले जाओ यहाँ से, और पानी फेंकते थे ताकि कोई अपसुगुन कुछ हो तो वो खत्म हो जाए। इतना उनका समाज में तिरस्कार होता था एक विधवा बनी तो मानो कि ऐसा समाज था, स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं था। नारी को जो शक्ति मानी जाती है उसको तो अबला मान करके उसको तिरस्कारा जाता था। तिरस्कार ना, धिक्कार ना, शोषण करना स्त्री पर, ये बहुत कुछ उस समय चलता था। और पुरुष लोग जो थे वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, सिंधी लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके बिजनेस तो देश विदेश में चलते थे, लंदन, अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर, जापान, ये सब देशों में वो भ्रमण करते थे। और उनकी स्त्रियां चार दीवारों में कैद होती थी क्योंकि स्त्री को कोई अधिकार नहीं था। आध्यात्म की तो बात छोड़ो, समाज में भी उनका कोई स्थान नहीं था। तभी तो उसी समय महात्मा गांधी ने राजा राम मोहन रॉय, लाला लाजपत रॉय, ये सब उस समय थे जिन्होंने स्त्री को थोड़ा आगे किया। और परमात्मा ने स्त्री को आध्यात्मिक रूप से आगे किया। अब ये आप देखेंगे इस विश्वविद्यालय के चमत्कार। तो राधे नाम की ये कुमारी थी, लगभग 15-16 साल की थी। तो इनकी माँ को देख करके उनको बहुत दुख होता था कि ऐसी मेरी माँ की स्थिति है, पिता तो गुजर गए। और इनकी विशेषता थी, बहुत सुंदर भी थी, स्कूल में जाती थी तो बहुत अवार्ड लेती थी, गीत गाती थी, वाद्य संगीत उनको आता था, सितार बजाती थी, हारमोनियम बजाती थी, नृत्य करती थी। लड़कियों का स्कूल था तो उसमें ये नंबर वन थी, अवार्ड लेती थी। तो ये तो उनका इसलिए ये बहुत फेमस हो गई। और माँ की ये दशा देख करके उससे सहन नहीं हुआ, परंतु उसको किसी ने कहा तुम इनको दादा लेखराज के पास ले जाओ तो वहां उनको थोड़ी शांति मिलेगी। तो जैसे ही अपनी माँ को लेकर के आई तो माँ ने बाबा को देखा, बस एकदम से वो ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। और इतना जो रोती रोती आई, जोर से हंसने लगी, इतना हंसने लगी कि कृष्ण के साथ वो रास कर रही है, इतनी खुशी उसको हुई। अब ये भी न्यूज बन गई कि राधे की माँ को कृष्ण का दर्शन हुआ और वो रोती रोती आई और हंसते हंसते गई, यानी इतना परिवर्तन उसके जीवन में आया। तो ये, और बाबा ने जब इनको देखा, इनके पिता को बाबा जानते थे क्योंकि बिजनेस थे साथ में, बिजनेस तो बिजनेसमैन तो सब एक दो को जानते, हैदराबाद सिंध के ही थे, छोटा सा शहर था। तो बाबा इनके पिता को तो जानते थे, तो इनको जब देखा बाबा ने तो उनको आया कि ये बहुत बड़ा काम कर सकती है यहाँ। तो बाबा ओम की ध्वनि करते थे, ओम, बहुत लंबी ओम की ध्वनि। और जैसे ध्वनि करते थे तो जो सभा में बैठे होते थे सबको श्री कृष्ण के दर्शन होने लगते थे। तो बाबा ने इनको कहा कि जैसे मैं करता हूँ तुम भी करो। और उस समय बाबा भजन लिखते थे, क्योंकि लोग आने लगे, सत्संग होने लगा, बाबा वैसे भी सत्संग कराते थे, तो ओम की ध्वनि के लिए इनको बुलाया कि आप करो। माँ तो बिल्कुल ही जैसे हम, वो तो उसी में ही उनका जीवन तो बदल ही गया। तो जैसे ये ओम की ध्वनि करने लगी तो इनसे राधे के साक्षात्कार, बाबा से कृष्ण के साक्षात्कार, और इनसे राधे, राधे कृष्ण, जैसे वो साक्षात्कार होने लगे। बाबा श्री नारायण का रूप, विष्णु का रूप, और इनसे लक्ष्मी का साक्षात्कार ऐसे होने लगा। और ये तो उस समय 16 साल की थी, 15-16, और बाबा तो 60 वर्ष से भी बुजुर्ग थे, नाना दादा की तरह ही थे। लेकिन उसी समय माँ और बेटी जैसे दोनों ही समर्पित हो गए, क्योंकि पिता तो गुजर गए थे, इनका एक भाई था वो भी गुजर गया था, तो इसीलिए माँ बेटी थी। फिर उसके बाद कैसे धीरे धीरे और बहनें आई। ये दादी प्रकाशमणि की युवा अवस्था है, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 38 साल तक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में रही। ये भी उस समय 14-15 साल की थी जब ये आई। इनकी कहानी फिर दूसरे प्रकार से, ये स्कूल पढ़ती थी, इनके पिता जो थे वो ज्योतिषी थे, तो ज्योतिष विद्या से पिता को पता चला था इनकी जन्म पत्री से कि ये मेरी बेटी मीरा जैसी बनेगी और अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करेगी। तो बचपन से ही इनको गीता से बहुत प्यार, श्री कृष्ण से बहुत प्यार, और एक ही लगन थी, बस मुझे तो मीरा बनना है, मुझे तो कृष्ण के साथ ही विवाह करना है बस। तो यही उसकी लगन थी, पढ़ाई तो करती थी। तो एक दिन इनको अपने घर में साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, और श्री कृष्ण ने कहा उनको कि मेरे से मिलना है तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा के पास जाओ। अब बाबा को तो वो जानती नहीं थी, उनको नहीं मालूम था, पिता को पता था लेकिन इनको नहीं मालूम था, तो स्कूल जाती थी। फिर उस समय सत्संग तो बढ़ता गया, लोग आते थे सत्संग करने के लिए, बाबा ओम की ध्वनि करते थे, और गीता हाथ में थी, गीता पुस्तक हाथ में रहती थी, और शिव परमात्मा उनमें प्रवेश हो जाते थे और ज्ञान देना शुरू कर देते थे। तो सत्संग बढ़ता गया, ये न्यूज फैल गई। तो जब स्कूल गई, इनकी फ्रेंड ने कहा कि यहाँ एक दादा लेखराज है, वो गीता का ज्ञान सुनाते हैं, और उनके पास जो जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते, चलो हम भी चले। जैसे आप लोग भी कई ऐसे होंगे, एक आया दूसरे को कहा तुम भी चलो, आबू चले, तो ऐसे ही चलो, ऐसे कह करके लोग आने लगे। तो इसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं, उसकी सखी ने स्कूल फ्रेंड थी, उसने तो ये कहा चलेंगे, परंतु कहा पिता से पूछो। तो जब पिता के सामने गई, तब ये जब तक पूछे तब तक पिता ने इसको कहा कि तुम तो गीता का पाठ करती हो, कृष्ण से तुम्हारा बहुत प्यार है, और सुना है यहाँ दादा लेखराज के पास जो जाते उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, तो तुम भी जाओ, जाके देख कर आओ क्या होता है, पहले तुम जाओ देखो फिर मुझे आके बताना। अब ये तो सुबह से वही अनुभव कर रही थी। तो अगले दिन जैसे ये बाबा के सामने आई, बाबा को देखते ही उनको कृष्ण का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हुआ, और एकदम साक्षात्कार में मस्त हो गए। अनुभव उसने वही किया श्री कृष्ण के साथ। 5 साल की ये छोटी बच्ची, कृष्ण भी 5-6 साल का एक ही उम्र के और रास कर रहे, ऐसे अनुभव किया इसने। फिर जब वो ध्यान से नीचे उतरी, तब बाबा ने इनको भी बुलाया कि देखो बच्ची, हाँ, क्योंकि उस समय बाबा ने एक स्कूल खोला था। अब ये एक दूसरी कहानी है, बाबा को अंदर में आता था कि ये छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं उनको आध्यात्मिक विद्या नहीं मिलती है, केवल लौकिक पढ़ाई मिलती है, गीता का ज्ञान नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है, तो आध्यात्मिक विद्या भी इनको मिले, इसके लिए बाबा ने एक स्कूल अपने तरफ से बनाया था, और उसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। तो बाबा के मन में था कि ये जो छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं, इनकी जो टीचर हो वो बहनें हो, क्योंकि बहनों के प्रति, नारी के प्रति बाबा को बहुत सम्मान था, बहुत रिस्पेक्ट। तो और वो बहने जो पढ़ाए वो श्री कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करे, अर्पित करे। ऐसे नहीं तनख्वाह लेवे, नौकरी के हिसाब से तनख्वाह लेकर के पढ़ाए, वो तो नौकरी हो जाती है, लेकिन जीवन कृष्ण को अर्पित करके बच्चों को पढ़ाए, समर्पित हो जाए भगवान के आगे। तो इसको तो इसके बारे में भी बाबा जानते थे, क्योंकि इनके पिता के मित्र थे वो, कि ये बेटी के लिए तो बाप ने कहा ये तो कृष्ण के साथ ही इनका संबंध है, ये तो मीरा जैसी है। तो बाबा ने इनको कहा कि देखो ये मेरा स्कूल है, यहाँ मुझे आप जैसी टीचर चाहिए, तो तुम इसमें पढ़ाओगी। तो इस प्रकार से कई कुमारियां आने लगी, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, मतलब इस प्रकार की बहनें ज्यादा आने लगी। और उसके बाद कैसे ये कार्य बढ़ता गया, ये स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ते थे, बाबा के मकान में ही रहते थे, और बहुत बड़ा मकान था बाबा ने बनवाया था, बोर्डिंग स्कूल के रूप में थे, और कैसे बाबा उनकी परवरिश करते थे। और फिर तो इस प्रकार के कई और भी परिवार जुड़ते गए, परिवार जुड़ते गए, और बाबा का बहुत बड़ा मकान था हैदराबाद सिंध में, वहां ही रहे। अब और आगे क्या हुआ, क्योंकि भगवान का कार्य शुरू हुआ, परमात्मा को नई सत्युगी सृष्टि की रचना के लिए नींव डालनी थी, तो उसी समय शिव परमात्मा ने पिताश्री जी के तन में प्रवेश होकर के एक ऐलान किया कि अभी जो भी यहाँ है सब अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाए। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, कुमारियां ज्यादा थी, बहनें ज्यादा थी, पुरुष कम थे, बहनें ज्यादा थी। हर एक अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाए, ये प्रतिज्ञा करे भगवान के आगे कि हम अपना जीवन पवित्र और योगी बनाएंगे। तो जो भी सत्संग में थे सब ने ये प्रतिज्ञा की, छोटे छोटे बच्चों ने भी, स्कूल में जो बोर्डिंग स्कूल में थे, क्योंकि सब साथ में ही पढ़ते थे। अब जब ये प्रतिज्ञा की, ये भी न्यूज बन गई कि दादा लेखराज ने ऐसे प्रतिज्ञा कराई है, छोटे छोटे बच्चों को भी प्रतिज्ञा कराई, तो बाबा के पास वो आए कि ये कैसे कर ले, तो छोटे बच्चों को तो दुनिया देखी नहीं इन्होंने, इनको आपने सन्यासी बना दिया। तो बाबा कहते थे सन्यासी नहीं बना, ये मेरी शक्ति नहीं है, मैंने नहीं किया, मैं भी तो आपकी तरह ही गृहस्थी हूँ, मेरा भी परिवार है, मैंने भी संसार तो बनाया है, ये तो भगवान कुछ कर रहा है, उनकी करामात है, ये मेरी ताकत है ही नहीं जो काम कर रही है, मेरी शक्ति होती तो मैं आपको बताता ये सब कौन कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, भगवान ने मुझे भी आदेश दिया कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। तो जैसे उनको आदेश दिया वैसे हमको भी दिया, हमने भी साथ साथ इनके साथ साथ हमने भी की, क्योंकि उनका आदेश था, ईश्वर का आदेश है। तो फिर क्या हुआ, हैदराबाद सिंध में जो वहां के कुछ लोग थे वो विरोधी बन गए, बाबा के विरुद्ध चले गए, और उन्होंने केस किया, विरोध करके एंटी ओम मंडली के नाम से ये ग्रुप प्रख्यात हो गया, क्योंकि ओम की ध्वनि करते थे, तो ये ओम मंडली ये इस प्रकार का ये कार्य कर रही है, तो ये तो हमारे समाज में तो इस प्रकार से कभी हुआ नहीं। तो बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, तो कैसे उनको समझाए। तो उन्होंने क्या किया, बाबा का जो मकान था उस मकान के आगे पिकेटिंग की, एकदम दरवाजे के आगे, और ये छोटे छोटे बच्चे जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे वो सुबह सुबह जाते थे वॉकिंग करने के लिए, पैदल करने, एक्सरसाइज करने के लिए जाते थे। तो जिस समय वो वापस आए तो ये सब जो शहर के लोग थे वो रास्ते में आके रुक गए कि अभी आपको यहाँ नहीं जाना है, सबको वापस जाना है, अपने अपने घर में लौट कर जाना है, ये कैसे प्रतिज्ञा करा दी दादा लेखराज ने। तो ये बच्चे तो बहुत बड़ी शक्ति बन गए, छोटे छोटे बच्चों में भी शक्ति आ गई, और उन्होंने कहा ठीक है आप खड़े हो तो हम भी खड़े। तो एक दृश्य है ये फोटो, पिकेटिंग करते हुए लोग और ये छोटे छोटे बच्चे, सबसे छोटी तो 6 साल की थी, उनसे और बड़े बच्चे थे, और बड़े भी और भी थे, तो करीब काफी सारे थे, वो सब वॉकिंग के लिए गए थे, एक्सरसाइज के लिए गए थे और वापस आए तो उनको अंदर नहीं जाने दिया। चलो फिर तो बाबा ने कहा कि अच्छा ये आपके ही रिश्तेदार है, ले जाओ इनको, हमको तो कोई मना नहीं है। अब वापस तो गए, परंतु उसके बाद फिर उन्होंने केस किया। अब जो केस किया तो केस में देखिए बाबा की लौकिक पत्नी है वो बीच में है और उनके वकील हैं, मम्मा है, तो मम्मा जगत अम्बा सरस्वती जो सबसे पहले पहले आई वो अलौकिक माँ के रूप में बनी क्योंकि परिवार का रूप हो गया। लेकिन उसके बाद बाबा हैदराबाद से कराची चले गए। कराची शहर बहुत बड़ा शहर है, हैदराबाद तो छोटा शहर, जैसे पूना छोटा है बॉम्बे की भेंट में, तो पूना और बॉम्बे वैसे हैदराबाद और कराची, तो कराची तो सागर के किनारे पर है, तो बाबा वहाँ चले गए। तो जो परिवार के परिवार आए, बच्चों सहित माँ बाप सब आए, तो उनके साथ बाबा कराची चले गए। ये परमात्मा का आदेश था। अब आपको आगे क्या करना है, विघ्न तो पड़ेंगे। तो कराची जैसे चले गए बाबा, वहाँ पर अलग अलग भवन बनाए और वहाँ पर सत्संग आरंभ किया। तो कैसे करीब 385 भाई बहने, जिसमें बहनें ज्यादा थी, वो समर्पित हो गए। 385, 400 के लगभग बहनें, कुछ भाई परिवार सहित सब वो समर्पित हो गए, ईश्वर को समर्पित हो गए। और करीब 14 साल 1937 से लेकर के 1950 तक, ये 13-14 साल कराची में रहे। ये कराची का क्लिफ्टन बीच है, सागर का किनारा है, जहाँ सुबह सुबह जाकर के सागर के किनारे पर बैठते थे और तपस्या करते थे। ये परमात्म शक्ति ने कार्य किया। आज जो हमारी दादियां आप देख रहे हो, ये उस समय परमात्मा ने इनके अंदर वो शक्ति भरी जो आज इतना बड़ा कार्य चल रहा है। हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है सब दादियां। दादी रतन मोहिनी जी कल आपसे मिले, वो भी उस समय 12 साल की थी, वो भी अपनी माँ के साथ आई। दादी जानकी जी आपसे कल मिले, वो उस समय 20 साल की थी, इसीलिए अभी 95 साल की है। तो उसी समय के हैं, शुरू के। तो कैसे 14 साल दुनिया की निगाहों से बिल्कुल दूर ये तपस्या करने लगे। और 1937 से 1950 तक दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक परिवर्तन आया विश्व युद्ध के रूप में। विश्व युद्ध छिड़ गया 1939 से 1945 तक, विश्व युद्ध चला 6 साल तक, जिसमें इंग्लैंड यूरोप में बहुत कुछ परिवर्तन आए, बदलाव आया, लाखों लोग मारे गए विश्व युद्ध के अंदर। अमेरिका और इंग्लैंड ने कैसे जापान जर्मनी इन पर चढ़ाई की और उन्होंने की, तो आखिर ये कैसे विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, जब अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराया हिरोशिमा नागासाकी पर, और जापान ने सरेंडर किया, हिटलर ने सरेंडर किया जर्मनी ने, और विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका इंग्लैंड की जीत हुई। परंतु उसके बाद क्या बड़ा परिवर्तन आया जो आप जानते हैं, भारत के अंदर भी बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बट गए, उसके बाद अंग्रेज गए, देश के दो टुकड़े करके अंग्रेज गए। तो एक तरफ अणु युद्ध, एक दूसरे तरफ ग्रह युद्ध जो भारत में छिड़ा, और तीसरे तरफ बहुत सारी उस समय प्राकृतिक आपदाएं भी आई, लेकिन ये संस्था वहीं की वहीं थी कराची में। और बंटवारा हो गया, ये पाकिस्तान में हो गए और भारत अलग हुआ, मानो भारत से दूर हुआ। अब ये तो वहीं थे, परंतु परमात्मा की इनके ऊपर कितनी आशीर्वाद थी कि इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। कई आतंक फैलाने वाले लोग आते थे, लेकिन सरकार का पूरा पहरा था जो इनके नजदीक भी कोई जा नहीं सका। और इन्होंने खूब तपस्या की उस समय भी। और जब 1947 के बाद 1950 में भारत गणतंत्र बना, स्वतंत्र के बाद गणतंत्र बना 3 साल के बाद, तब परमात्मा का आदेश मिला कि अभी भारत में जाओ। और तो कराची में रहते थे सागर के किनारे पर, और वहीं तपस्या की। और फिर 1950 में माउंट आबू आए, ये भी परमात्मा का उनको आदेश मिला कि अभी सागर के किनारे से पहाड़ पर जाओ। तो माउंट आबू ये पहाड़ चुना, क्योंकि माउंट आबू कराची से बहुत दूर नहीं है। आप माउंट आबू जाएंगे, ये तो आबू रोड है, आबू की तलहटी है, और आप ऊपर जाएंगे, यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर है, तो पौने घंटे घंटे में पहुँचते हैं। और वहां से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये पश्चिम बॉर्डर है भारत का, और पश्चिम के तरफ अगर मुड़ेंगे तो जब वहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ों के पीछे कराची है, बहुत दूर नहीं है। तो परमात्मा का आदेश मिला कि भारत जाना है और पहाड़ पर जाना है, तो ये पहाड़ सबसे नजदीक था, नहीं तो पहाड़ तो बहुत है भारत में, कहाँ नैनीताल, मसूरी, कश्मीर, महाबलेश्वर, वो भी कई है, कई हिल स्टेशन है, लेकिन ये उस समय चुना क्योंकि नजदीक भी था। और जैसे यहाँ आए, कैसे आए, वो भी एक कहानी है, क्योंकि जहाज से आए तो जो हिंदू लोग वहां से भागे थे, कई तो हाथ खाली नंगे पैर आए थे, हिंदू सिख बहुत सारे लोग वहां से भागे थे, क्योंकि बिल्कुल सिविल वॉर जैसा रूप हो चुका था, देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था। तो अब वो तो आ गए हाथ खाली सब कुछ छोड़ करके, लेकिन ये तो वहीं रहे 3 साल और भी। तो पाकिस्तान सरकार, जो सिंध की सरकार थी, उनका बड़ा सहयोग मिला, चीफ मिनिस्टर ने बड़ा सहयोग दिया और कहा कि आप अपना सारा सामान लेके जा सकते हैं। तो देखिए, ये सारा सामान लेकर के पैक करके बैठे हैं, और उनको स्टीमर मिला, एक जहाज दिया गया कि आप इस जहाज में अपना सारा सामान लेकर के जाएं। तो माउंट आबू ये स्थान क्यों चुना, क्योंकि बाबा के गुरु थे गंगेश्वरानंद स्वामी, बहुत बहुत प्रख्यात गुरु थे। तो उन्होंने बाबा को, वो बहुत ही बाबा के पक्ष में थे कि आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं ये कन्याओं, माताओं, देवियों का। तो उन्होंने कहा हमारा यहाँ आश्रम है आबू में, आप उसमें जाकर के रह सकते, पहाड़ पर जाना है तो। तो अब ये जो उनका आश्रम है माउंट आबू में, लेकिन बहुत छोटा है, 50 लोग मुश्किल से रह सकते हैं, और ये तो 385 भाई बहने थे। तो माउंट आबू जो शहर है ऊपर, वो राजाओं महाराजाओं का गर्मी के समय का स्थान है। जो राजस्थान के राजाएं महाराजाएं हैं, वो गर्मी के दिनों में माउंट आबू आते थे। बहुत महल है चारों तरफ माउंट आबू में, अलवर पैलेस, जोधपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, जयपुर पैलेस। तो जब भारत गणतंत्र बन गया स्वतंत्रता के बाद, तो सब राजे रजवाड़े खत्म हो गए भारत के, तो सबको एक प्रजातंत्र में जोड़ दिया गया। तो उनको कहा गया कि ऐसे महल तो रख नहीं सकते, तो कईयों ने तो वो कई फिर वो स्कूल बना दिए, होटल बन गए हैं सारे, जो बड़े बड़े महल है माउंट आबू में वो या तो होटल है या तो स्कूल है, तो बोर्डिंग स्कूल भी है और या होटल है, तो ऐसे है। तो इसीलिए एक महल इन्होंने चुना जो माउंट आबू में, वो भरतपुर राजा का महल है, तो वो इन्होंने चुना और यहाँ पर आए। तो ये ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में, ये जहाज से ओखा में आए, ये जहाज में बैठे हैं सब, और फिर वहां से ट्रेन ली ओखा से, जो सीधा उनको आबू रोड ले आए। 14 साल के बाद दुनिया देखी, क्योंकि वहां तो वो केवल सागर किनारे जाते थे और बाकी तपस्या करते थे, बहुत कुछ अंदर ही अंदर साक्षात्कार करते थे। 14 साल कैसे इनके बीते तो दादियां बताती है, जैसे 14 महीने या 14 दिन के रूप में, पता ही नहीं चला दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो तपस्या में रहते थे। तो ये देखिए ट्रेन से झांक रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, और आबू रोड स्टेशन पर पहुंचे और माउंट आबू आए, तो माउंट आबू में जैसे बाबा आए तो वहां उनकी तपस्या शुरू हुई, ब्रह्मा बाबा की तपस्या शुरू हुई, मम्मा की भी तपस्या शुरू हुई। और अभी जैसे आबू में आए तो जो 300-400 जो भाई बहने थे उनके रिश्तेदार तो पहले से ही आ गए थे, तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप हमारे पास आकर के जो आपने 14 साल तक ज्ञान अर्जन किया है, तपस्या की है, वो हमें भी इसका लाभ पहुंचाओ। तो फिर कैसे बाबा तपस्या करते थे और तपस्या के फल स्वरूप बाबा की शक्ति तो और भी बढ़ती गई, बहनों की शक्ति और बढ़ती गई। तो ये एक दूसरी दादी है, मनोहर इंदिरा दादी, जो ज्ञान सरोवर का डायरेक्टर थी और अभी 4 साल पहले ही इन्होंने देह त्याग किया। ये भी 12 साल की उम्र में आई थी और इनके रिश्तेदार सब दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में आ गए हैदराबाद सिंध से। तो उन्होंने इनको निमंत्रण दिया कि आप दिल्ली में आओ और हम लोगों को ये ज्ञान सुनाओ। तो मनोहर दादी जी दिल्ली गई और दिल्ली में जैसे ही ये पहुंची, अपने घर में गई, वहां ये ओम की ध्वनि बहुत सुंदर करती थी जैसे मम्मा करती थी। तो जैसे इसने ओम की ध्वनि अपने घर में की, अपने रिश्तेदारों के सामने की, तो इनसे देवी का साक्षात्कार सबको होने लगा, दुर्गा अम्बा शक्ति का रूप इनसे देखा। तो मंदिरों से निमंत्रण आने लगा कि आप हमारे यहाँ आकर के भाषण करो, सत्संग करो, तो वहां जाने लगी। तो जैसे एक धुन मच गई दिल्ली में, 1952 की ये बात है कि किस प्रकार एक देवी आई है, उसने 14 साल तपस्या की है और उनसे सबको देवी के दर्शन होते हैं। तो देखते देखते उनके घर के अंदर सत्संग बढ़ गया, तो सत्संग का तो स्थान बड़ा चाहिए, घर तो छोटा होता है, तो जमुना के किनारे जाकर के सत्संग करती थी, मंदिरों में करती थी। तो एक मास तक लगातार ये चलता रहा सिलसिला। फिर उसने कहा मैं तो वापस जाऊंगी आबू, क्योंकि परिवार वालों ने निमंत्रण दिया था तो आई थी। तो लोगों ने कहा कि आप वापस कैसे जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमको कौन सत्संग कराएगा। तो इसने बाबा को लिखा, बाबा मैं क्या करूं, तो बाबा ने कहा अगर ये आपसे चाहते हैं तो आप इनको कहो कि एक मकान लेकर के दो, हम उस मकान में अलग से रहेंगे और वहां सत्संग करेंगे और आप लोग उसमें आइए। तो उन्होंने कहा मकान लेना कौन सी बड़ी बात है, मकान लेंगे तो हमारा पहला सेवा केंद्र, ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहला सेवा केंद्र आबू के बाद, वहां पाकिस्तान में तो सब छोड़ आए लेकिन आबू में आके बसे 50 में और 52 में, 52 में पहला सेवा केंद्र हमारा दिल्ली में खुला। बस उसके बाद भाई बहने आने लगे, माउंट आबू आने लगे, धीरे धीरे वृद्धि होती गई। ये दादी प्रकाशमणि मम्मा बाबा के संग और मम्मा की तेजोमय स्वरूप को देख करके कैसे लोग बहुत आकर्षित थे। मम्मा भी बहुत यात्रा करती थी, ये लखनऊ में मम्मा गई है, वहाँ सेंटर खोला, वहाँ से मम्मा कानपुर में गई, तो यूपी में बहुत सारे सेवा केंद्र अपने खोले उसके बाद 52 के बाद। मानो चारों तरफ बैंगलोर बॉम्बे सब तरफ बाबा के सेवा केंद्र खुलते गए और दादी प्रकाशमणि अधिकतर मम्मा के साथ रहती थी। जहाँ भी मम्मा जाती थी अलौकिक रूप में, हम उनको मम्मा कहते हैं, ताकि बाबा से तो बहुत छोटी थी तो अलौकिक माता पिता के रूप में हमारे सामने मम्मा बाबा थे जिन्होंने यज्ञ की पालना की। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी हमारी मम्मा थी, क्योंकि परमात्मा ने बहनों को ही आगे किया। यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारियों का जहाँ सम्मान है वहाँ देवताओं का वास है। और नारी शक्ति जागेगी आध्यात्मिकता में तब विश्व का परिवर्तन होगा, तब सतयुग इस धरा पर आएगा, ये परमात्मा का आदेश था। तो कैसे परमात्मा ने आध्यात्मिकता के द्वारा नारी शक्ति का उत्थान किया, तो दादी प्रकाशमणि मम्मा के साथ। और मम्मा धीरे धीरे अपने उत्कृष्ट रूप को धारण करती गई और मम्मा बाबा मिलकर के हमारे सामने अलौकिक माता पिता के रूप में थे, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत थे। मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने भी मम्मा को देखा, बाबा को देखा, क्योंकि मैं 1959 में मैं सबसे पहले अपनी माँ के साथ आई बॉम्बे में। तब स्कूल पढ़ती थी, 12 साल की उम्र थी मेरी, और मैंने इनको देखा। देखते ही मुझे ऐसे महसूस हुआ कि यही हमारे सच्चे अलौकिक माता पिता हैं। फिर तो 1965 में मम्मा ने अपना देह त्याग किया। छोटी आयु थी, करीब 46 वर्ष की थी जिस समय मम्मा ने 1965 में अपना देह त्याग किया। और उसके बाद दीदी मनमोहिनी, ये दूसरी हमारी बड़ी बहन थी, जिन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में रही, प्रशासन उन्होंने किया, या अलौकिक माँ के रूप में पालना दी। इनकी भी बड़ी सुंदर कहानी है। ये भी करीब 16-17 साल की थी जब ये आई, और इनका तो बहुत ही बड़ा परिवार था, बहुत नामी ग्रामी परिवार था। इनके चाचा चाची, बॉम्बे का जो जसलोक हॉस्पिटल है वो उनके चाचा थे, जसुमती उनकी चाची थी, लोकुमल उनके चाचा थे। तो चाचा चाची ने आकर के बॉम्बे में हॉस्पिटल खोला, जसलोक हॉस्पिटल। इनके ही पेरेंट्स थे जिन्होंने केसी कॉलेज खोला, केसी कॉलेज जो बॉम्बे में है, किशनचंद चेलाराम कॉलेज। सिंधियों ने आकर के हैदराबाद, सिंध से भारत में आकर के ये बहुत सारे हॉस्पिटल और कॉलेजेस खोले। तो ये उसी परिवार की थी, और ये जैसे ही बाबा के सामने आई, एकदम से उसको भी श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। बस ये दो बहनें, इनकी माँ, इनके भी पिता की डेथ हो गई थी, इनके तो भाई तो बहुत थे, पर माता पिता की डेथ हुई तो ये पिता की डेथ हुई तो इनकी माँ और इनकी दो बहनें और इनके दूसरे जो कजिन्स, वो सब समर्पित हो गए इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। बस फिर तो मम्मा के देह त्याग के बाद दीदी मनमोहिनी आबू में रहती थी, और बाबा बहुत ट्रैवलिंग करते थे। ये दिल्ली में बाबा गए हैं, कई छोटी छोटी बच्चियां बाबा के सामने एक गीत प्रस्तुत कर रही है। और फिर माउंट आबू में पार्टियां आने लगी, भाई बहने आने लगे, परिवार के परिवार आते थे, और बाबा मम्मा बाबा से पालना लेते थे। ये सभी अलग अलग फोटोज हैं। बाबा पत्र बहुत लिखते थे बच्चों को, और सेवा केंद्र तो बढ़ते ही गए, तो बाबा एक एक को जवाब देते थे। तो जहाँ बाबा पत्र लिखते थे माउंट आबू में, पांडव भवन जो अपना पुराना अपना पहला हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर बाबा रहते थे। आप लोग परसों जाएंगे वहाँ देखेंगे, तो ये बाबा की झोपड़ी है जहाँ बाबा बैठ करके पत्र लिखते थे बच्चों को। तो इसलिए वो भी एक यादगार है बाबा की झोपड़ी में, जहाँ बाबा पत्र लिखते थे। ये हिस्ट्री हॉल है जहाँ बाबा वाणी चलाते थे, मुरली चलाते थे, उसमें वो भी आप देखेंगे। तो पांडव भवन जो अपना सबसे पहला मुख्यालय है, वहाँ इनको हम चार धाम कहते हैं, बाबा की झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल, और तीसरा है बाबा का कमरा, और चौथा है शांति स्तंभ। तो पिताश्री जी कैसे 93 वर्ष की उम्र तक साकार में रहे, और 93 वर्ष की उम्र में भी बाबा ऐसे सीधा बैठते थे, कभी चश्मा नहीं लगाया, कभी हाथ में लकड़ी नहीं उठाई, कभी झुके नहीं, ऐसे अंत तक बाबा की इस प्रकार से बाबा ध्यान में बैठते थे। और कैसे यही हमें आदेश देते थे कि सब एक हैं, एक पिता परमात्मा की संतान हैं, आपस में हम सब भाई भाई हैं, सब उस निराकार शिव परमात्मा को याद करो, और सबका वही एक मालिक है। ये बाबा का कमरा है जहाँ बाबा रहते थे, अभी वो बाबा का कमरा मेडिटेशन के रूम के रूप में, आप माउंट आबू जाएंगे देखेंगे। ये बाबा का पलंग है, और अंतिम श्वास इस पलंग पर ही लिया, रात के 9:15 थे लगभग, 18 जनवरी का दिन था 1969 की रात थी, और दादी प्रकाशमणि जी बाबा के सामने थी, और कैसे बाबा अव्यक्त हो गए, देह त्याग किया। दादी जी कि दृष्टि, जैसे दादी जी को दृष्टि दी और दादी जी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और आत्मा उड़ गई, सूक्ष्म वतन की वासी बनी। और दादी प्रकाशमणि 1969 बाबा के अव्यक्त होने के बाद मुख्य प्रशासिका के रूप में रही। दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी दोनों ने मिल करके ये पूरा प्रशासन संभाला। तब तक तो कई हजार सेवा केंद्र भारत में खुल चुके थे, तब तक विदेश में कोई केंद्र नहीं था, भारत में ही थे। तो 69 से लेके 2007 तक दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका के रूप में रहे। और पिता श्री ब्रह्मा बाबा की स्मृति में पांडव भवन में शांति स्तंभ बनाया गया है, क्योंकि उसी स्थान पर बाबा के देह का, पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया था, समाधि के रूप में है पिताश्री जी की। आप माउंट आबू जाएंगे तो देखेंगे। और कैसे हजारों भाई बहने 18 जनवरी के दिन विशेष रूप से पांडव भवन में आते हैं और इस स्मारिका के पास अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसके बाद जैसे पिताश्री जी अव्यक्त हुए, तो दादी प्रकाशमणि जी के साथ अन्य कई ऐसी दादियां थी जो उस समय 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र की थी, और 69 में तो काफी बुजुर्ग थी, बड़े हो गए थे। और वो दादियों ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। और फिर तो विदेशों में हमारी सेवा केंद्र खुलने लगे। ये पहला विदेशियों का ग्रुप 1976 में माउंट आबू आया, तब विदेश में लंदन में हमारा सेवा केंद्र खुल चुका था, हांगकांग में, अमेरिका में, कई जगह खुल चुका था। और 1983 में पांडव भवन के सामने ओम शांति भवन बना, जहां 3000 भाई बहने बैठ सकते हैं। बहुत बड़ा हॉल है, बिना पिलर्स का, यहां तो 20,000 बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें 3000 बैठ सकते हैं। और उसमें हम लोगों ने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया। तब तक हमारी संस्था यूनाइटेड नेशंस की भी मेंबर बन गई थी, अमेरिका के अंदर वहाँ अपना केंद्र था, यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में अपनी यूएन में ऑफिस है ब्रह्मा कुमारी की। और वहां से भी लोग आते रहे, बड़े बड़े साधु संत महात्मा आने लगे। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, संतों की कॉन्फ्रेंस 1986 में। और 1991 में ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ, ये भी माउंट आबू में है, जो हमारी एकेडमी है, जहाँ पर अलग अलग प्रभागों के लिए कार्यक्रम होते रहते हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल बना है माउंट आबू में, आप जाएंगे तो अवश्य देखेंगे। ये भी 91 में बना, और यहाँ पर गांव-गांव के लोग आते हैं। अभी तो नीचे भी खुल गया है, पर उस समय 91 में माउंट आबू में खुला, क्योंकि वहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल इतना है नहीं, सिविल हॉस्पिटल तो बहुत छोटा सा है। तो गांव यहाँ के बहुत आदिवासी लोग रहते हैं, बहुत गरीब इलाका है ये सारा आदिवासियों का इलाका है, ट्राइबल बेल्ट इसको कहते हैं। तो चारों ओर बहुत गरीब लोग हैं, तो उनके लिए फ्री शफा यहाँ इस हॉस्पिटल में मिलती है। यहाँ अपना ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ आबू रोड में ही जाएंगे, यहाँ आई हॉस्पिटल भी है। गांव-गांव से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ आँखों की तकलीफ बहुत है, धूल मिट्टी रेगिस्तान की बहुत है, तो काफी तकलीफ है। तो खास आँखों का यह हॉस्पिटल बनाया है, जहाँ उनको फ्री लेंस देते हैं, अगर उनको मोतिया होता है तो ये फ्री सारा उपचार करते हैं। और ये डायमंड हॉल 1996 में हॉल बना, तब हम लोगों ने डायमंड जुबली मनाई थी 1996 में, इसलिए इसी हॉल का नाम डायमंड हॉल रखा गया है। इस भव्य डायमंड हॉल में लगभग 20,000 लोग बैठ सकते हैं। आप यहाँ अभी कुर्सियाँ रखी है, इसलिए लगता है भरा हुआ, लेकिन जमीन पर तो 20,000 से भी अधिक लोग बैठ सकते हैं। और दादी प्रकाशमणि जी ने इसकी बागडोर संभाली। दादी प्रकाशमणि जी ने 85 साल की उम्र में 2007 में 25 अगस्त को अपना देह त्याग किया। मानो कैसे दादी जी की अध्यक्षता में ये संस्था दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ी और 48 साल तक इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो दादी जी की स्मृति में इसी हॉल के आगे प्रकाश स्तंभ बनाया गया है, यहीं पर दादी के पार्थिव देह का संस्कार किया गया था आश्रम के अंदर ही, वो भी आपने देखा होगा। कल आपसे दादी जानकी जी मिले जो वर्तमान मुख्य प्रशासिका है, 96 साल की उम्र है इनकी, लेकिन कितनी शक्ति है जो अभी भी दादी जी इतनी ट्रैवलिंग करते, इतना दिमाग इतना दुरुस्त है, जो बातें भूलनी नहीं चाहिए कभी नहीं भूलती। और दादी कहती है जो बातें याद नहीं करनी है मैं कभी नहीं करती हूँ, और जो भूलनी नहीं वो कभी नहीं भूलती हूँ। इसीलिए इसी इस उम्र में भी इनकी इतनी शक्ति है। और कैसे यहाँ प्रशिक्षण केंद्र है, हजारों कुमारियां आती है प्रशिक्षण लेने के लिए, हमारे जैसे टीचर्स का भी प्रशिक्षण होता रहता है, और जन जागृति के लिए विशाल सभाएं करते हैं, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। दादी जानकी के साथ दादी हृदय मोहिनी जी है जो सह मुख्य प्रशासिका है, वो इस समय अहमदाबाद में है और कुछ दिनों में यहाँ आने वाले हैं, अपने कुछ उपचार के लिए वहाँ गए हुए हैं, तो 20 तारीख के बाद यहाँ आएंगे, 22-23 तक पहुँचेंगे ऐसी उम्मीद है। तो अगर आपके समय आए तो अवश्य आप उनका दर्शन शायद कर सके, लेकिन हमारा भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जिसमें 30 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें हजारों भाई बहने आते हैं। तो दादी हृदय मोहिनी जी ये सह मुख्य प्रशासिका है, और दादी जी की विशेषता है, आप भी जब इस संस्था में आई, दादी हृदय मोहिनी जी आप 9 साल की उम्र की थी, और दादी जैसे अपनी माँ के साथ आई और दोनों जैसे बाबा के सामने आए और इसने बाबा को देखा, तुरंत ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। बहुत इनको साक्षात्कार होते, अभी भी साक्षात्कार ही करती रहती है, और इनकी ये विशेषता है कि इसी साक्षात्कार के बलबूते पर परमात्मा ने इनको अभी माध्यम चुना है। पिताश्री जी के देह अवसान के बाद दादी हृदय मोहिनी जी मानो रथ बनी और शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा इनके तन में प्रवेश करते हैं और वाणी चलाते हैं, और उसको हम कहते हैं अव्यक्त बाप दादा। बिल्कुल उनका चेहरा बदल जाता, सब कुछ बदल जाता, और हम वाणी सुनते हैं, और हजारों भाई बहने लाखों भाई बहने देश विदेश के आते हैं, और जो भी यहाँ प्रस्तुत चलता है, वाणी चलती है, वो प्रसारण भी होता है हमारे टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कई सेवा केंद्रों पर भी लाइव दिखाया जाता है। हो सकता है आप लोगों ने भी अपने केंद्रों पर देखा हो, जिन्होंने देखा वो हाथ उठाए, तो आप थोड़ा जानते हैं। आप सोचेंगे कि हमने टीवी पर तो देखा है, लेकिन हम यहाँ भी आ सकते हैं उस समय जब ये कार्यक्रम होता है, हम कहते क्यों नहीं आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हमारे नियम है, वो नियमों का आप पालन करेंगे, उसके आधार पर ही आपको यहाँ उन दिनों में आने का मौका मिलेगा। लेकिन वो नियम क्या है, कम से कम 6 मास रेगुलर स्टूडेंट के रूप में, हमारे विद्यार्थी के रूप में वहाँ केंद्रों पर जाएं, अन्न की शुद्धि, संघ की शुद्धि, जो हमारे नियम है उनका पालन करें, तो अवश्य क्यों नहीं आ सकते हैं, परमात्मा से अपना अधिकार वरदान के रूप में अवश्य लें। और यही लक्ष्य है कि कैसे इस सृष्टि का परिवर्तन कर कलयुग के बाद उस सत्युगी दुनिया को यहाँ लाना है, और उसके लिए मानव से देव बनना है, यही इस विद्यालय का लक्ष्य है। ओम शांति, ओम शांति। तो 75 साल की कहानी आपको 75 मिनटों में सुनाई, पसंद आई, अच्छा लगा, अवश्य इसको अपने जीवन में धारण करेंगे तो अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे। ओम शांति।